बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशस्त को लेते हैं फिर डाले समझे का गांधी सेंटर से हाजिर खिदमत हैं। आगाज़ करते हैं हम सब शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब आज जिस मौजू पर मैं आपसे इस्तफादा करना चाहता हूँ, सवाल करने से पहले एक इकतबास आप हजरात और गांधी साहब की खिदमत में रखता हूँ, फिर मौजू से मुतलक पूछता हूँ। मेरे सामने अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी का एक इकतबास मौजूद है, 1917 में उन्होंने लिखा। वो लिखते हैं कि मुसलमानों की तरक्की और तनज़ली दोनों का एक ही सबब है और वो ये कि उनका फौरी और वक्ती जोश। वो सैलाब की मानिंद पहाड़ को अपनी जगह से हिला सकते हैं, लेकिन कोकन की तरह एक एक पत्थर को जुदा करके रास्ता साफ नहीं कर सकते। वो बिजली के मिसल एक आन में खिरमन को जला सकते हैं, लेकिन चींटी की तरह एक एक दाना नहीं ढो सकते। वो एक मस्जिद की मुदाफ़त में अपना खून पानी की तरह बहा सकते हैं, लेकिन किसी मुनहदिम मस्जिद को दोबारा बनाने के लिए मुस्तकिल कोशिश नहीं रख सकते। ये इनसे मुमकिन था कि मोहम्मद अली और अबुल कलाम के दाएं बाएं गिरकर जाने दे दें, लेकिन इनके बस की बात नहीं कि मुसलसल आइनी जदोजहद से इन असीरान इस्लाम को जेल से छुड़ा लाएं। हमारी नाकामी का असल सबब यह है कि हम आंधी की तरह आते हैं और बिजली की तरह गुजर जाते हैं। हमको दरिया के उस पानी की मानिंद होना चाहिए जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता और साल हर साल में किनारों को काट कर अपना दहाना वसी कर जाता है। कामयाबी सिर्फ मुसलसल और पायदार कोशिश में है। हिमालय की बर्फानी चोटियाँ आहिस्ता आहिस्ता पिघलती हैं, लेकिन कभी जमुना और गंगा को खुश्क होने नहीं देती। आसमान का पानी एक दो घंटे में दश्त जबल को जलथल बना देता है, लेकिन चंद ही रोज़ में हर तरफ खाक उड़ती नज़र आती है। हम सब अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी हमारे अहद का एक बहुत ही अबकरी, बड़ा अलमई, बड़ा नाफ़गा, बड़ा यगाना नाम, बड़े मुफक्किर जो कि उम्मत की माजी की तारीख पर भी नज़र रखते थे और मुसलमानों के जवाल के असबाब को भी जानते थे। क्या फरमाते हैं इस इकतबास को सुन के, जिस मर्ज की उन्होंने निशानदेही की है कि मुसलमान मिल्लत मुसलमान कौम में ठहर के लहमल बना के ठंडे दिल दिमाग से कदम ब कदम मुस्तकिल पायदार जदोजहद करने के बजाय इनकलाब, जलथल, फौरी तब्दीली और एक हंगामा है जो नज़र आता है, और उन्होंने इसी को मुसलमानों की तनज़ली का बुनियादी सबब करार दिया।
100% सही बात है। उन जैसे जलीलुल कदर आलिम ने ज़िंदगी भर के मुताले का निचोड़ बयान कर दिया है। मुसलमानों की तारीख में इससे पहले भी जो बाज बड़े लोग हुए हैं उन्होंने अपने दौर के लोगों पर तबसरे किए हैं, जैसे शाह वलीउल्लाह के बाद तबसरे हमको तफ़ीमात में मिलते हैं, इमाम इब्ने तैमिया के बाद तबसरे उनके फतावा में, उनकी दूसरी तसनीफात में मिलते हैं। उन सब से यही अंदाज़ा होता है कि सब्र की तलकीन बड़ी बुनियादी हैसियत रखती है। ये तो एक आलिम है, बड़े आलिम हैं, और मुसलमान कौम में अपने तजुर्बे की बुनियाद पर तंबीह कर रहे हैं। क़ुरान मजीद ने पैगंबरों को यही तंबीह की, यही तवज्जो दिलाई, बार बार ये कहा है कि कहीं सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ दें। अल्लाह ताला ने जो नक्शा बनाया है, जिस स्कीम पर वो दुनिया को चला रहे हैं, उसमें चीज़ें बिलमूम तदरीज से पैदा होती हैं, तदरीज से नशो नमा पाती हैं, तदरीज से एक ख़ास अंजाम को पहुंचती हैं। अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि वो जवान इंसान आसमान से बराह रास्त नाजिल कर देता, मिट्टी के पेट से अच्छे खासे तलोमंद लोग यक बयक निकल खड़े होते, लेकिन वो अपनी मखलूकात को भी इसी तरह तदरीज के मुख्तलिफ मराहिल से गुजारता है। ये जो हमारे ज़माने में बड़े साइंसदानों ने मुताला किया है और ये मालूम हुआ कि ये ख़ास तरह का इर्तकाई अमल हर जगह नज़र आता है। दुनिया का भी जब मुताला किया गया तो ये अंदाज़ा हुआ कि उसमें एक ख़ास तरह की तरतीब मलहूज़ है। यानी एक दौर में जिस तरह के जानदार वजूद में आए हैं वो नस्बता सादा और कम पेचीदा हैं, और फिर तदरीज के साथ पै दर पै वो मखलूकात पैदा होती चली गई हैं जिनमें ज़्यादा तनव्वो है, जिनके नज़म में ज़्यादा पेचीदगी है, जिनमें रियाजियाती पहलू ज़्यादा नुमाया है, यहाँ तक कि फिर हम इंसान को देखते हैं। ज़ाहिर है कि मखलूकात में जो मखलूकात हमारे लिए मरई हैं, काबिले मुशाहदा हैं, उनमें इंसान ही सरखैल है। इंसान में गोया تخلیق کا عمل اپنے اتمام کو پہنچ گیا ہے. تو یہ سب بھی اسی طرح سے ہوا ہے. بقائے اصلاح کا جو قانون دریافت کیا گیا وہ قانون اپنی ذات میں غلط نہیں ہے, وہ بھی اسی چیز کو بیان کرتا ہے. جو اصناف کے بارے میں ایک تصور قائم کیا گیا ہے یا قیاس کیا گیا ہے کہ شاید وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے یہ صورت اختیار کرتی ہیں, اس قیاس کی بھی اگر ذہنی بنیاد دیکھیں تو یہی چیز ہے. دنیا کی تاریخ کو دیکھیے تو وہاں بھی چیزیں ایسے ہی نمودار ہو رہی ہیں. بلکہ قرآن مجید نے مزید توجہ دلائی ہے کہ ہم چیزوں کو زوج زوج پیدا کرتے ہیں, یعنی ایک چیز اپنے اندر بعض ایسے خلا رکھتی ہے کہ جس کو بھرنے کے لیے پھر ایک دوسری چیز اس کے جوڑے یا زوج کی حیثیت سے پیدا ہوتی ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن, ہم نے سب چیزوں کو زوج زوج پیدا کیا ہے. یہ چیز آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے, نباتات میں نظر آتی ہے, جمادات میں نظر آتی ہے, حیوانات میں نظر آتی ہے. اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں تو فکر و خیال میں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی ہر جگہ ایک خاص طرح کے جوڑے ہیں یا زوجین ہیں جن کا باہمی تعامل ایک لمبے عرصے کے بعد یہاں کے کہیں نتیجہ خیز ہوتا ہے. اگر آپ انسان کے آگے بڑھنے کے عمل کو دیکھیں تو پہلے وہ ایک فرد کی حیثیت سے مرد ہے یا عورت کسی ماں باپ کے یہاں پیدا ہوگا, پیدائش کے مختلف مراحل سے گزرے گا, بچپن اور لڑکپن کے مراحل ہوں گے, اس کی عقل, اس کا شعور, اس کے سوچنے کا انداز, اس کی صلاحیتیں, اس کی نفسیات, سب کچھ ایک تدریج سے نمایاں ہونا شروع ہوتی ہے. کئی مراحل سے گزرنے کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب اس کا دوسرا زوج تلاش کیا جائے. پھر وہ تلاش شروع ہو جاتی ہے, کہیں 18 سال کی عمر میں, کہیں 20, کہیں 25, اب تو اور عمر بڑھ گئی ہے, وہاں جا کے پھر وہ تلاش کرتے ہیں. جس زوج کو آپ تلاش کرتے ہیں اس کے لیے بھی وہی مراحل گزرے ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور جا کر ایک بازار میں آرڈر دیں اور آپ کو اگلے دن بنا بنایا زوج مل جائے, ایسا نہیں ہوتا. تو جب آپ ان دونوں میں یہ طے کرتے ہیں کہ اب یہ مل کر زوجین بنیں گے تو اس عمل کو ایک خاص مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ اس قابل کر دیتا ہے کہ پھر آپ بقائے نسل کا اہتمام کرتے چلے جاتے ہیں, اور یہی سلسلہ مزید آگے بڑھتا ہے. افکار کا بھی جب مطالعہ کیا گیا ہے تو اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے. صاف معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کوا کو آلات کے ساتھ, ارواح کو اجسام کے ساتھ, محنت کو سرمایہ کے ساتھ, فرد کو اجتماع کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے, اور ان کے جوڑنے کا عمل بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی تدریج سے ہوتا ہے. تو تجرید یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں آپ حیاتیات سے لے کر سیاسیات تک, سماجی علوم تک, عمرانیات تک ہر جگہ کار فرما دیکھتے ہیں. یہ ہم کو سبق دیتی ہے کہ یہاں نتائج کبھی فوراً نہیں حاصل کیے جاتے, نتائج کو نصب العین کے طریقے پہ سامنے رکھنا چاہیے. اور جب آپ کوئی نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے یہ طے کریں کہ وہ نتیجہ کیا ہے. مثلا آپ نے طے کیا کہ مجھے تو آم کا باغ لگانا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آم کا پودا کتنے برسوں میں جا کے پھل دیتا ہے, اس کے لیے زمین کیسی تیار کرنی ہے, ماحول کیسا فراہم کرنا ہے. یہ سارا علم اگر آپ کو نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس خواہش میں مبتلا رہیں اور کبھی کبھی جوش میں آ کر آپ دائیں بائیں سے کوئی آم کی ٹہنیاں توڑ کے لے آئیں اور کہیں دیکھیے میں نے لہلہاتا باغ بنا دیا ہے, لیکن وہ چند دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ انہوں نے تمثیل کے طریقے پہ بتایا ہے کہ سیلاب آتا ہے اور بظاہر تو لگتا ہے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے, کبھی آپ دیکھیں تھر میں جب کبھی سیلاب آ جاتے ہیں بالکل ایسے ہی لگتا ہے, جہاں پانی کی ایک بوند نظر نہیں آتی وہاں دریا بہ رہے ہوتے ہیں. 2 یا 3 دن کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی. اگر آپ کوئی پائیدار نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں تو خواہ وہ سیاست ہے, خواہ وہ معیشت ہے, خواہ وہ معاشرت ہے, آپ کو اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. تو معاشرت میں تو آپ نے دیکھا ہے یعنی کتنا وقت اللہ تعالیٰ لیتے ہیں جس میں کہیں جا کر بقائے نسل کا اہتمام ہوتا ہے, اور پھر بقائے نسل کا اہتمام ہو کے کیا فارغ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد تعلیم, تربیت, उनको अपने पाँव पर खड़ा करना है, उनको फिर इस काबिल बनाना है कि वो इस मामले को आगे चला सके। तो इस तरह से अगर हमें अपनी तरबियत करने का मौका मिले, हमें अपने आप को सिखाना चाहिए, खुद एहतसाबी करके सिखाना चाहिए, कोई चीज़ नतीजा खेज नहीं होगी अगर हमने तदरीज का तरीका अख्तियार नहीं किया। हम बार बार ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी तालीम दी कि सियासी और समाजी मामलात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखिए कि जो चीज़ें रसूलुल्लाह के ज़माने में ऐसी मौजूद थीं कि वो अपनी असल के लिहाज से काबिल कबूल नहीं थी या नहीं होनी चाहिए, उनको दुरुस्त होना चाहिए था, लेकिन क्या उनको चश्म जदन में दुरुस्त करने का तरीका अल्लाह ताला ने इख्तियार किया? उसके लिए अहदाफ मुतय्यन कर दिए, यहाँ तक पहुँचना है, ये चीज़ हासिल होनी चाहिए, लेकिन कदम ब कदम इस जानिब बढ़ा जाएगा। तो ये कदम ब कदम बढ़ने का तरीका ही अपने अंदर खैर और सलाह रखता है, और इसी नतीजे से आप बड़े इम्कानात का तसव्वुर कर सकते हैं, उनकी तवक्को कर सकते हैं। और अगर ये हौसला नहीं है तो दुनिया में कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं उठना चाहिए।
एक नुकता बिल्कुल वाजह हो गया। अच्छा खान साहब, ये दो चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो दिलाई कि अल्लाह ताला खुद रूए ज़मीन पर जब अपनी स्कीम को रूब अमल करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी तदरीज का तरीका है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने दो कौमों का इंतखाब किया कि अब ज़मीन पर हर हर मोहल्ले में हर हर जगह पर पैगंबर नहीं आएंगे बल्कि कौमों का इंतखाब करके दुनिया के वस्त में वो दावत फैलाएं। खुद उन कौमों की तश्कील के मराहिल में 500 साल गुजर गए, लेकिन खालिक कायनात जो कुन फयकून से मामलात में नताइज का हुसूल कर सकता है, वो खुद कुदरत होने के बावजूद सब्र और तहम्मुल के साथ देख रहे हैं कि जब कौम की तश्कील होगी तब अगली जिम्मेदारी इनके सुपुर्द करेंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है। हर मामले में आप देख लीजिए, मसलन अल्लाह ताला ने एक सियासी नज़म बना दिया था सैयदना मूसा के बाद।
जी,
ये मालूम है कि जैसे हमारे यहाँ खिलाफत हुई है, उनके बाद भी इसी तरह जो दो उनके सहाबी हैं यूशे और कालिब, उन्होंने एक खिलाफत का नज़म कायम कर लिया था इसी तरह से। और उस नज़म में कोई बादशाहत नहीं थी, कोई बादशाहों का सतुमतराक नहीं था, कोई दरबार नहीं थे। बनी इसराइल का नज़म बहुत सादगी के साथ और कमो बेश जमहूरी रियासतों के तरीके पर ही चल रहा था। जिन लोगों पर एक अमूमी सा एतमाद कबायली नज़म में होता है वो ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेते। एक मरहले पर आकर उन्होंने अल्लाह ताला से तकाजा किया कि ये हमें अच्छा नहीं लगता, यानी दुनिया की कौमों में बादशाह हैं, उनके दरबार हैं, उनकी सल्तनतें हैं, उनका शान व शिको है, फिर ये कि उसके ज़रिए से दुनिया पर उनकी धाक बैठती है, तो ये हमारा क्या है? यानी ऐसे लगता है कि कौम नहीं है, यतामा है सबके सब, तो हमें भी कोई बादशाह नहीं। उसमें आप ज़रा तौरात में पढ़िए, अल्लाह ताला ने किस तरीके से समझाया है उनको कि तुम्हें अंदाज़ा है ये तुम क्या मांग रहे हो? अगर ये बादशाह मुकर्रर कर दिया गया तो तुम्हारी ना बहू बेटियों की आबरू सलामत रहेगी, ना तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स सलामत रहेगी, ये दरबारों में बुला के तुम्हें जलील किया करेंगे। एक पूरा नक्शा खींचा है कि बादशाहत क्या होती है, और इसमें जब मुतलकुल अनान बादशाह पैदा हो जाते हैं तो किस तरह कौमें बिल्कुल महकूम और ग़ुलाम होकर रह जाती हैं, ये खुद अल्लाह ताला ने बताया। इस वक्त भी जो आप बाइबल है उसमें उठा के देखिए, 2-3-4 पैराग्राफ हैं जिसमें इसके नक्शे खींच कर बता दिया है। बनी इसराइल ने कहा कि नहीं, हमें तो ठीक चाहिए। ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि जो कौम है जिसमें आप एक निज़ाम कायम करना चाहते हैं वो अपने शऊर की सतह में वहाँ नहीं पहुँची, तो उस परवरदिगार ने उनके इरादा और इख्तियार दे रखा है, लोगों के अमल पर उनकी हालत के लिहाज से फैसले करता है। ये नहीं है कि इंसानों के ऊपर कोई फ़ैसला मुसल्लत कर दिया जाए, तो अपनी सारी स्कीम को तब्दील करके ये फरमाया कि अच्छी बात, हम बादशाह मुकर्रर कर दें। तालूत को बादशाह मुकर्रर किया गया, उस पर भी एतराज़ हो गया लोगों की जानिब से। उनका ख्याल ये था कि हमारे अंदर से किसी ऐसे शख्स का इंतखाब होगा जो बहरहाल को पस मंज़र रखता होगा, दौलत रखता होगा, बड़ा कबीला रखता होगा, कोई ख़दम व हशम रखता होगा, छोटे कबीले का आदमी मुंतखब कर लिया। उसमें फिर दलील दी है कि मैंने क्यों मुंतखब किया है। खैर, किसी न किसी तरीके से वो राज़ी हो गए। अल्लाह ताला ने नबूवत के मामले में ये तब्दीली की कि उनके अंदर जो पैगम्बर उसके बाद आए वो बादशाहों में से बनाए।
दाऊद अलैहि सलाम, सुलेमान अलैहि सलाम।
सैयदना दाऊद, सैयदना सुलेमान। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी नतीजे को अपनी ख्वाहिशात से पैदा नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ता है कि हालात क्या मैसर हैं, आप किस जगह पे खड़े हैं, लोग अगर आपके साथ हैं तो क्या मामला उनके साथ करना है। यही सबब है कि जिन चीज़ों पर सदियों के बाद इंसान काबू पाने में कामयाब हुआ है या उनको हासिल करने में कामयाब हुआ है, बाज़ लोग जब उनको देखते हैं तो ये कहते हैं कि अच्छा सहाबा इकराम ने पार्लियामेंट क्यों नहीं बना दी थी, तो ये फरमाइए कि ग़ुलामी का फ़ौरन ख़ात्मा क्यों नहीं कर दिया था, सारे के सारे ग़ुलाम एक दिन सुबह उठ के आज़ाद क्यों नहीं कर दिए थे। वो इस बात को नहीं जानते कि इंसानों के साथ मामलात इस तरह नहीं किए जाते, अहदाफ मुकर्रर कर दिए जाते हैं। तो अहदाफ आप देखिए सब मुकर्रर कर दिए, मसलन रियासत के नज़म के बारे में बता दिया कि ये असलन अमरोहम शूरा बैनाहम पे होना चाहिए, लेकिन उसको कानून या हुक्म नहीं बनाया बल्कि ये बात कह के लोगों पर छोड़ दिया। वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरें, हालात के लिहाज से अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा करें और वह असबाब पैदा करें जिससे इस तरह का नज़म वजूद में आ जाए। ग़ुलामों के बारे में कुछ चीज़ें फ़ौरन कर दी जो हो सकती थी, जब लड़ाई का या जंग का मौका आया तो कहने अब ग़ुलाम नहीं बनाए जाए, रास्ता बंद किया जा रहा है, ये बता दिया कि मुकातबत का एक तरीका हमने वज़ा कर दिया है, इस तरीके से जो लोग आज़ाद होना चाहते हैं वो आज़ाद हो जाए। अमूमी तौर पर ऐलान कर दिया कि हमारा दीन लोगों को ग़ुलाम नहीं रखना चाहता, वो तो ये चाहता है कि फ़क़ और रकबा लोगों की गर्दनें छुड़ा दी जाए, लेकिन इस मामले में कोई गैर मामूली इकदाम नहीं किया गया, किसी मरहले पर उसको छोड़ दिया गया लोगों पर, वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता उन अहदाफ तक पहुँच जाए। तो सियासी समाजी चीज़ें वो मामला जो उर्फ बन चुके होते हैं उनको ऐसे नहीं छेड़ते। आपके मुल्क में देख लीजिए, यानी इस बात से कौन नावाकिफ है कि जुमे का मेंबर, ईदैन का मेंबर ये रियासत के साथ ख़ास है। इस वक्त दुनिया में जो बाकी मुसलमान मुल्क हैं उनमें 90% मकामात पर यही सूरत हाल है, वहाँ वो रिवायत चली आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ इस्तेमार के नतीजे में वो रिवायत ख़त्म हो गई। अब अगर आप अगले दिन ये हुक्म देना चाहें तो अच्छी खासी गलियों बाज़ारों में खाना जंगी हो जाएगी। तो आपको फिर तदरीज ही का एक तरीका इख्तियार करना होता है, यानी अहदाफ मुकर्रर करके आप उन चीज़ों को हासिल करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाज़ मौक़ों पर जब वो अभी मजहबी रहनुमा होते हैं या सियासी रहनुमा होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको मामलात की जिम्मेदारी दी जाती है तो हकीकत बिल्कुल वाजे होना शुरू हो जाती है, यानी वहाँ से चीज़ें सही तरीके से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, दुनिया क्या है, कहाँ खड़ी है, क्या है। इसी तरह के मामला हमारे यहाँ बाद सादा लोग जहाद जहाद करके बर्पा कर देते हैं, उनका ख्याल होता है कि बात ही क्या है, दो चार लोग अगर जज्बे के साथ उठ खड़े होंगे बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा उठ खड़ी होगी तो दुनिया में फलां और फलां नतीजा निकल आएगा, नतज इस तरह नहीं निकलते। इसी को सैयद सुलेमान नदवी ने, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बताने की सही की है कि मुसलमानों को भी अपने अंदर स्कीम बना के अहदाफ मुकर्रर करके तरीके और सलीके के साथ अपने मकासद को हासिल करने और उनके लिए जद्दोजहद का नक्शा बनाने का तरीका इख्तियार करना चाहिए। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि फौरन फला नतीजा निकल आए। इस पर हमने बारह बाद रहनुमाओं को जिनसे हमें बात करने का मौका मिला तवज्जो दिला के देखा, कुछ देर के लिए वो ये सुनते हैं और उस लाए अमल पर अमल भी करते हैं लेकिन फिर जल्दबाजी में मुब्तला हो जाते हैं। ये आपके इलम में होगा कि बाज़ लोगों ने मौलाना सैयद अबुल्ला साहेब मौदूदी के इकदाम का तजिया किया है, तो उसमें अगरचे ताबीर तो गलत इख्तियार की, यानी हुब्बे आजला की तरकीब इस्तेमाल कर दी, वो तो किसी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन उजलत बहरहाल मौजूद होती, यानी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आप एक जल्दबाजी किसी नफ्सियात में मुब्तला हो जाए, बड़े लोग भी हो जाते हैं छोटे भी हो जाते हैं, ये ख़तरनाक चीज़ फिक्र ख्याल में भी ऐसी है। बस ये चार मनाजरे मनक़द कर दें, सारा मुसलमानों का मुखातबीन वैसे ही बेचारे चित होकर गिर पड़ेंगे और उसके बाद हक़ का गलबा कायम हो जाएगा, पैगम्बर से तो हुआ नहीं। इसलिए अल्लाह ताला की स्कीम देखें कि वो किस तरह पै दर पै अपना काम करते चले जाते हैं और फिर कहीं सदियों में जाके वो नतीजे निकलते हैं। तो वो चीज़ें जो मेरे लिए या अपनी ज़ात के लिए इख्तियार करने की हैं उनको तो मैं हर वक्त इख्तियार कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप सोसाइटी से मामला करें तो वहाँ तदरीज और सब्र, सब्र और हिकमत, ये लाजमी अमूर है।
तो बिल्कुल वाजह हो गया हम सब आज की नशिस्त का। एक आखिरी सवाल, कुछ अपने अहद, अपने समाज, अपने पस मंज़र से मुतल्लिक करके, इसी बहस के पस मंज़र में हमारे मुल्क के अंदर ये बात एक इस वक्त समाजी हकीकत है, आलमगीर सदाकत है कि वो लोग जिनके पास असलहा है, बंदूक है, हमारे मुल्क की मुसल्ला अफवाज हैं, इस्टेब्लिशमेंट का ये जो भी उसका नाम रखें, हमारे यहाँ जो अन्नान इकतदार है वो असलन पिछले 70 साल से उन्हीं के हाथ में है। ताकत का सरचश्मा आवाम के बजाय वो मराकज़ हैं, अब ये हकीकत है। और दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि उनके पास नहीं होनी चाहिए, दस्तूर भी यही कहता है, दुनिया का उर्फ भी कहता है, आलमगीर अखलाकियात भी कहती है, जमहूरी रिवायत भी कहती हैं। अब कुछ लोग खड़े होते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये तो हक़ और इंसाफ़ के ख़िलाफ़ है, जो कि बात बिल्कुल हकीकत में मबनी है। लेकिन दूसरी जानब जब कोशिश की जाती है तो कोशिश या नतीजा कारगर नहीं होता। इस तरह के मामलों में भी आपको लगता है कि ये एक लंबी इनिंग्स हैं जिसमें कदम ब कदम आपको 2, 3, 4 अहदाफ हासिल करने हैं, क्योंकि समाजी तौर पर ताकत तो उनके पास है, अब उनसे ताकत आवाम के पास कैसे मुंतकिल हो ये एक दिन की बात नहीं है।
इसमें देखिए एक बड़ी बुनियादी गलती है। मैंने अर्ज़ किया ना कि तदरीज तो अल्लाह ताला का तरीका है। तदरीज में आपको ये देखना होता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको यहाँ से लंदन जाना है तो आपके इलम में होना चाहिए ना कि किस एयरपोर्ट से आपको रवाना होना है, कहाँ से आपको सवारी मिलेगी और कितना फ़ासला आपको तय करना है, ये मालूम होना चाहिए ना। इस वक्त आप कहाँ खड़े। मुझे अपना जवानी के ज़माने का, तालिबे इल्मी के ज़माने का एक वाक़िया याद है। हमारे यहाँ हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं चौधरी मोहम्मद अली साहब, मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं डॉक्टर साजिद अली, उनके वो अज़ीज़ थे। तो एक दिन हम तालिबे इल्मों को ख्याल हुआ कि उनसे मिलते हैं, जैसे कि लोग बड़े लोगों से, सियासतदानों से, उलमा से, शुरा उदबा से मिलते हैं। तालिबे इल्मी के ज़माने में हम भी मिलने चले जाते थे। मालूम हुआ कि वो गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर रहते हैं किसी जगह, और उस ज़माने में ना मेन बुलेवार्ड इस तरह का था ना गुलबर्ग इस तरह का था। ये 70 के ज़माने की बात है, बल्कि उससे भी थोड़ी सी पहले की होगी। तो मैं और साजिद अली साहब हम लोग निकले और वहाँ पहुँचे तो जिस जगह अब लिबर्टी है, इस जगह एक नक्शा लगा हुआ था। उस नक्शे में सारे घरों के बारे में बताया गया था कि वो कहाँ कहाँ है, बड़ा सा नक्शा था। ये मुतय्यन किए बगैर कि हम कहाँ खड़े हैं, हमने वो नंबर ढूंढना शुरू कर दिया। आप अंजाम का अंदाज़ा कर सकते हैं, यानी अच्छी खासी गर्मी में हाल ख़राब हो गया। फिर किसी शरीफ आदमी ने तवज्जो दिलाई कि नक्शा इस तरह देखा जाता है,
पहले खुद देखो तुम कहाँ हो।
पहले ये तो देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। तो ये हमारा जब मुल्क वजूद में आया है तो हमने ये नहीं देखा कि जमहूरियत मिसाल के तौर पर ये कहाँ से शुरू होती है, इसके लिए बुनियादी चीज़ें क्या हैं, इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। अगर आप गौर करें, चलें बाकी सारी बहस को आप छोड़ दें, इसके लिए बहुत तरबियत याफ्ता, बहुत मुनज़्ज़म सियासी जमातें चाहिए होती,
जमहूरियत चलाने के लिए
हमारे यहाँ वो थी नहीं। यानी मुस्लिम लीग तो बिल्कुल आखिरी ज़माने में सियासी जमात की सूरत इख्तियार कर ली, पहले तो उसकी हैसियत ही नहीं थी। एक बड़े ज़िम्मेदारों की क्लब की सी नौीयत थी उसकी, और उसी एतबार से वो अपना काम कर रही थी। तो 5-7 साल में ना तो सियासी कारकुन पैदा होते हैं जिस तरह के होने चाहिए, ना उनकी तरबियत होती है, ना उस तरह के लीडरशिप के कैडर बनते हैं। इनमें से कोई चीज़ भी नहीं थी। जब कोई चीज़ भी नहीं थी तो आपने कहा कि नहीं, वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी, इसलिए कि जो हमारे कायदीन थे वो इसी का ख्वाब देखते थे। जैसे ही आपने इसकी इब्तदा कर दी तो हकीकत बिल्कुल सामने आ गई। यानी अभी कौमी हैसियत से हम ताकत और कानून के तवाज़ुन को समझने की जगह पर आए ही नहीं थे।
तो ब्यूरोक्रेसी ने कू कर
इसके
दिया।
बिल्कुल बरखिलाफ़ कांग्रेस का मामला ये नहीं था। यानी वो एक सियासी जमात की हैसियत से तरबियत पा चुकी थी, बहुत मराहल से गुजर चुकी थी, बहुत बड़ी लीडरशिप पैदा कर चुकी थी। उसकी लीडरशिप अभी तक चल रही है, ख़त्म नहीं हुई, उस ज़माने की पैदा की हुई। तो ये एक ऐसा तफावत था जिसके लाजमी नताइज निकलने थे। नाचे वहाँ देखिए, वहाँ जमहूरियत जैसे तैसे भी चलती रही। कभी फ़ौज ने, बड़ा मुल्क है, बड़ी फ़ौज है हमारे यहाँ, तो ये हकायक है। देखना ये चाहिए था कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। वही नक्शे पर पहले मुतय्यन कीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं, फिर सफ़र के मनाजिल मुतय्यन करके आप चलते। अगर आप चलते तो अब तक शायद बहुत मुस्तहकम सियासी निज़ाम से ہم ایک اچھی جمہوریت کی طرف 50-60 سال میں بڑھنے میں کامیاب ہو جاتے. تو جو چیز ہم نے پہلے دن حاصل کرنا چاہیے وہ اصل میں کوئی 60-70 سال کے بعد حاصل ہونا تھی. تو اب صورتحال کیا ہے؟ وہی جو فارسی کے اس مصرعے میں کہی جاتی ہے کہ ہرچے دانا کند نہ کند نادا لیک بعض از خرابی بسیار. یعنی جو کام دانا کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح کرنا ہے, نادان بھی وہی کرتے ہیں لیکن بہت خرابی کے بعد.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم سب ہم نے آج ایک بڑے اہم موضوع پر غام صاحب سے استفادہ کیا, اس کی جزیات میں, اور مسلمانوں نے دنیا بھر میں جو مختلف ان کو کرائسس پیش آئے ان میں کیسے بیہیو کیا, اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.